माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी जय शोदनन्दन ब्रज जन रञ्जन यशोदनन्दन ब्रज जन रञ्जन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 Thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Jai Radha Ramana Radha Ramana Radhe. ಶೀಲ ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ಟರ ಪ್ರಾಣ ಧನ ಹೇ ಜಯ ರಾಧಾ ರಮಣ ರಾಧಾ ರಮಣ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧಾ ರಮಣ ರಾಧಾ ರಮಣ ರಾಧೆ ಕಲಿಯುಗ ಪಾವನ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕೀ ಸಮವೇತ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೀ ಜಯೋಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಜಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟತರ ಸತಸತ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಎಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದಿಕಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಫೌಂಡರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭುಪಾದಿಕಿ ಜಯೋಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಜಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟತರ ಸತಸ್ ಡಿವೈನ್ ಗ್ರೇಸ್ ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಕಿ ಪ್ರೇಮ್ ಸಿ ಗೋ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದಕಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಗೋ ಗೋಪಿನಾಥ ಶ್ಯಾಮ ಕುಂಡ ರಾಧಾ ಕುಂಡ ಗಿರಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಕೀ ಮಥುರಾ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ ಕೀ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಮಾಯಿ ಕೀ ಭಕ್ತಿ ದೇವಿ ತುಳಸಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೀ ಸಮವೇತ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೀ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ಡಿವೋಟಿ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಆಲ್ ಗ್ಲೋರಿಸ್ ಟು ಶ್ರೀ ಗುರು ಅಂಡ್ ಶ್ರೀ ಕೌರಾಂಗ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣಿ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ತೋ ಹಮ್ ಆಜ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಸಬ್ ಸಮಾಗಮ ಹುಯೇ ಹೈ ಬಹುತ್ ಹಿ ಪಾವನ್ ತಿಥಿ ಹೈ ಆಜ್ श्री राधा रमन जी का आविर्भाव तिथि है। जय श्री राधा रमन भगवान की। तो आज इस अवसर पर वृंदावन में अगर जाएंगे तो राधा रमन मंदिर के अंदर खड़े होने के लिए जगह नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर आराम से बैठे हैं राधा रमन मंदिर में। ये गोवर्धन इको विलेज का फायदा है जो यहाँ पर राधना स्वामी महाराज ने बनाए। इतना खुला आसमान में बैठे हैं और राधा रमन जी का दर्शन कर रहे हैं। और बोला जाता है कि अगर हमारा चेतना अच्छा है तो यहाँ पर भी वृंदावन हमारे साथ वैसा ही आदान प्रदान करते हैं जैसे ओरिजिनल भौम वृंदावन है। तो गुप्त वृंदावन का जो वृंदावन है कुछ अलग नहीं है। भक्तों का चेतना अगर शुद्ध रहता है तो गुप्त वृंदावन भी भौम वृंदावन की तरह आपके साथ आदान प्रदान करता है। तो आइए आज के इस पावन तिथि पर हम राधा रमण जी के बारे में कुछ सुने, ताकि हमारा चेतना को हम राधा रमण जी के चरण कमल में और अच्छे से उनका स्मरण कर पाए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा कृपा को बटर सकें। जैसे कभी किसी का बर्थडे रहता है तो बोलते हैं कि उस दिन वो उसका दिल बहुत बड़ा रहता है, औदार्य रहता है, भर भर के सबको ब्लेसिंग्स मिलता है। तो उसी प्रकार आज भगवान जी का बर्थडे है, उनका आज आविर्भाव तिथि है, तो इसीलिए राधा रमण जी का हम कुछ सुनेंगे, कुछ उनके बारे में चर्चा करेंगे, तो उनका बहुत कृपा हमको सबको मिलेगा। तो राधा रमण जी के बारे में अगर चर्चा किया जाए, भगवान के बारे में अगर चर्चा किया जाए, तो भगवान का लीला भक्त के बिना अधूरा रहता है। अभी कल नरसिंह चतुर्दशी था, अभी नरसिंह देव के बारे में कोई लीला बोलेंगे, बिना प्रह्लाद का लीला कैसे बोल सकें? प्रह्लाद आएंगे तभी लीला में मधुरता बढ़ता है। तो उसी प्रकार राधा रमण जी का लीला अगर आपको सुनना है तो उनके सबसे परम भक्त कौन है? गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो उनके बिना उनका लीला भी अधूरा हो जाएगा। तो आइए थोड़ा हम फोकस अभी करेंगे, कैमरा हमारा गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे, फिर उनके ऊपर आएंगे। तो आपको मैं लेके चलता हूँ श्री रंगम दक्षिण भारत के तरफ। ये समय है 1500 सेंचुरी का, चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले चुके थे और लेने के बाद वो जगन्नाथपुरी आते हैं। और आप सबको पता रहेगा जगन्नाथपुरी में जब आते हैं तो दक्षिण भारत का यात्रा में निकलते हैं, प्रचार करने के लिए निकलते हैं। और जैसे ही प्रचार करते करते पहुंचते हैं श्रीरंगम मंदिर में पहुंचते हैं, और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का जो पद्धति था बहुत आसान पद्धति था। हम लोग यहाँ पर मीटिंग करते हैं, प्रीचिंग मीटिंग एचआरडीए में, कि कैसे प्रचार किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी किया जाए, गाँव में क्या किए। चैतन्य महाप्रभु बहुत सिंपल प्रचार करते थे, वो जाते थे गांव में कीर्तन करते थे और जो भी सामने आया उसको आलिंगन करते थे, और एक आलिंगन में डायरेक्ट कृष्ण प्रेम देते थे और इधर उधर नहीं, श्रद्धा सीधा भाव प्रेम, और व्यक्ति उधर ही पागल हो जाता था, मूर्छित हो जाता था, हाई वोल्टेज 440 का वोल्टेज। और ऐसा बोला जाता है कि जिसको कृष्ण प्रेम मिलता था वो जिसको आलिंगन करता था उसको भी कृष्ण प्रेम मिलता था। तो महाप्रभु का प्रचार बहुत सिंपल था और बहुत सरल था, फास्ट फॉरवर्ड था। तो इस प्रकार प्रचार करते करते पहुंच गए श्रीरंगम मंदिर। कितने जन गए हैं श्रीरंगम मंदिर? अरे बाप रे, गए हैं, मैं अभी तक गया नहीं, धन्य आप लोग। तो उसी श्रीरंगम मंदिर आप जो गए हैं आप याद कीजिए, विग्रहों के सामने चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में नाच रहे हैं, और जब श्रीरंगम मंदिर में भगवान चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में नाच रहे हैं तो पूरा आसपास के सब गांव के लोग आ जाते हैं, देखते हैं कि अरे व्यक्ति कौन है ऐसे नाच रहे हैं। और वहां पर एक उस एरिया का जो सबसे प्रमुख ब्राह्मण के जो हेड थे उनका नाम था वेंकट भट्ट, तो आके देखते हैं। देख के ही अभी जो डिवोटी रहता है उसको पता चल जाता है कि भक्त का लक्षण क्या है। एक बनिया रहता है तो दूसरा बनिया को पहचान लेता है, बराबर ना? तो उसी प्रकार सेम फ्रिक्वेंसी मैच होता है ना। तो वेंकट भट्ट जैसे ही देखते हैं कि बोले ये तो कोई दिव्य पुरुष है, जो चैतन्य महाप्रभु नाच रहे कोई साधारण पुरुष नहीं है, और तुरंत वेंकट भट्ट जाके उनके पास खड़े रहते हैं। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु अपना नृत्य समावेश करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि महाप्रभु कृपया करके हमारे घर में प्रसाद के लिए आइए। तो उनको घर में इन्विटेशन देते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, तो उनके घर में जाते हैं और लंच प्रसाद हम लेते हैं।
और ये जो समय है अभी, जैसे गर्मी का टाइम चालू है, मई का टाइम चालू है, फिर जून, फिर क्या आएगा है? चतुर्मास। अभी हल्का सा बारिश हुआ ना, इंद्रदेव ने थोड़ा झलक दिखाया, सब लोग टेंशन में आ गया, हमारा साउंड सिस्टम पूरा वाइंड अप हो गया था। मैं बोला हो गया लगता है लेक्चर आज कैंसिल, फिर बोले नहीं नहीं प्रभु जी हो गया। फिर तो जैसे ही बारिश का मौसम चालू होता है तो चातुर्मास चालू होता है। तो चातुर्मास में जो साधु संत रहते हैं यात्रा में निकलते हैं, क्योंकि चातुर्मास में भ्रमण करना थोड़ा मुश्किल है ना, कीचड़ हो जाता है, बारिश हो जाता है, कपड़ा भीग जाएगा, कहाँ आप जाएंगे। तो चातुर्मास में एक जगह पर रह के भजन कीर्तन करते हैं, और चातुर्मास जैसे समापन होता है फिर यात्रा में निकल जाते हैं। तो इस समय था बारिश का शुरू होने का समय था, तो वेंकट भट्ट ने पूरा फायदा उठा लिया। तो उन्होंने क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु का, अरे महाप्रभु ये तो चातुर्मास अभी शुरू हो रहा है, अब कहाँ जाएंगे अकेले अभी सन्यासी, आप हमारे घर में 4 महीना आराम कीजिए, यहाँ पर भजन कीर्तन कीजिए, हर रोज प्रसाद लीजिए, जो भी आपको लगेगा मैं सेवा करूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है, सोचो क्या फॉर्चून था वेंकट भट्ट का, उनके घर में चैतन्य महाप्रभु 4 महीना उनके घर में रहते, महाप्रभु का एक रूम दे दिए, महाप्रभु वहां पर भजन कीर्तन करते थे, हर रोज सुबह जाते थे श्री रंगम मंदिर में कीर्तन करते थे, फिर घर में आके प्रसाद लेते थे। और उस समय वेंकट भट्ट के एक छोटे से पुत्र थे, उनका नाम क्या था, गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो उनको उस समय कितना साल हुआ था, बहुत छोटे थे, छोटे थे। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे आते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी हमेशा आके चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते थे, कुछ पानी देना, जैसे आप घर में कोई आते तो मम्मी कैसे बच्चा को भेजता है ना, जाके पानी तो अंकल को, तो बच्चा जाके देता है, मीठा मीठा बोलता है, सबको अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही वेंकट भट्ट हमेशा गोपाल भट्ट गोस्वामी को भेजते थे, तब गोस्वामी नहीं थे गोपाल थे, तो पानी लेके देते थे चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु का सेवा बहुत किए, और इस प्रकार 4 महीना गया और चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार सेवा करते रहे। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनको पास में बिठाते थे, उनको गोदी में बिठाते थे, उनको प्रेम करते थे। सोचो जिस बच्चा को महाप्रभु के गोदी में बैठने का मिला है फॉर्चून। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत आनंद में थे, लेकिन वो आनंद ज़्यादा समय तक नहीं गया। क्यों, समय देखते ही देखते 4 महीना निकल गया और चैतन्य महाप्रभु का जाने का समय हो गया। और जैसे चैतन्य महाप्रभु जाने का समय हो गया, गोपाल भट्ट रोने लगे, अरे महाप्रभु जा रहे। तब चैतन्य महाप्रभु एक चीज बोलते हैं, क्योंकि वेंकट भट्ट जो थे वो भगवान के शुद्ध भक्त थे वो भी, तो महाप्रभु बोलते हैं कि अरे देखो आपका जो बेटा है ना गोपाल भट्ट, ये बहुत अच्छा भक्त है, और इसका ना जब बड़ा हो जाएगा इसको शादी नहीं करवाने का। देखो कौन माँ बाप को कैसा लगेगा, बच्चा छोटा है और उसको बोल रहे बड़ा हो जाएगा ना उसको शादी नहीं करवाने का, उसको ऐसा ही रखने का, ब्रह्मचर्य रखने का, और उसको वृंदावन भेज देने का। तो वेंकट भट्ट को सोचो कैसा लगेगा, बेटा छोटा है वेंकट भट्ट, लेकिन इतने भगवान के शुद्ध भक्त थे वो भी चैतन्य महाप्रभु का जो बात उसको सुने। और गोपाल भट्ट को बोले कि बेटा बड़ा जब होगा तो शादी नहीं करने का, ब्रह्मचारी रहने का, और ऐसा भी नहीं कि घर छोड़ के भाग जाने का, माँ बाप का पूरा सेवा करने का। कभी कभी बेटा ब्रह्मचारी हो जाता है तो सब बोलते ना, अरे माँ बाप का सेवा नहीं किया, घर छोड़ के चला गया, सब कौन देखेगा माँ बाप को। तो देखिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु पूरा जस्टिफिकेशन करते हैं, बोलते हैं कि गोपाल भट्ट बड़े हो जाओगे माँ बाप का अच्छे से सेवा करना, लेकिन शादी मत करना, और जैसे माँ बाप चले जाएंगे तब मेरे पास आ जाना वृंदावन में, और फिर हम आपको संन्यास देंगे, आगे प्रचार करना। तो गोपाल बोला ठीक है जैसे आपका इच्छा है। तो इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, महाप्रभु का भी इच्छा पूर्ण हो गया, माँ बाप का इच्छा भी पूर्ण हो गया, और अच्छे से उन्होंने सेवा किया। और गोपाल भट्ट का बचपन से भी उनका संन्यास का लक्षण था। तो इस प्रकार समय बीत गया और माँ बाप का अच्छे से सेवा किए, और जैसे उनके माँ बाप वेंकट भट्ट परलोक चले गए तो गोपाल भट्ट सीधे चले आते हैं कहाँ पर, वृंदावन, दौड़े दौड़े आ जाते हैं वृंदावन, तब तक बड़े हो गए होते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तब वृंदावन में नहीं थे। तो वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट तो सोचे कि मैं आऊंगा तो चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करूंगा, लेकिन इधर आए तो चैतन्य महाप्रभु नहीं है। बोले कि किधर है चैतन्य महाप्रभु? बोले चैतन्य महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में, वो तो वृंदावन आके यात्रा करके 2 महीना चले भी गए हो। बोले चले गए? बोले हाँ, वो जगन्नाथपुरी में। बेचारा वेंकट भट्ट, सोचो इतना दूर से आया, साउथ इंडिया से पूरा श्रीरंगम से वृंदावन, और फिर बोला कि अभी क्या करूं। तब तक रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे, बोले कि अब इतना दूर आए तो थोड़ा यहाँ रुको, भजन कीर्तन करो। और तब तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में कौन सा मंदिर में बैठ के हर रोज भागवत कथा सुनते थे? तोटा गोपीनाथ मंदिर। किनके द्वारा सुनते थे? किन? गदाधर पंडित के साथ बैठ के भागवत सुनते थे। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन बोले कि गदाधर, इतना दिन हो गया वृंदावन से कुछ चिट्ठी नहीं आया। आजकल व्हाट्सअप मैसेज आ जाता है 1 सेकंड में, पहले तो नहीं था, पहले चिट्ठी लिखते थे, खत लिखते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो वृंदावन से अभी तक चिट्ठी नहीं आया, बहुत दिन से हो गया ऐसा चल रहा है डिस्कशन। उसी समय एक चिट्ठी आता है वृंदावन से, महाप्रभु चिट्ठी आ गया। बोले कौन सा चिट्ठी आया? बोले कि खबर आया है कि वृंदावन में गोपाल भट्ट गोस्वामी पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु इतना आनंदित हो जाते हैं कि प्रसाद उधर ही छोड़ के उछलना चालू कर देते हैं कि गोपाल गोपाल, क्योंकि महाप्रभु का इच्छा था कि गोपाल भट्ट जब बड़े हो जाएंगे वो वृंदावन आना चाहिए, क्योंकि उनके हाथों से बहुत कुछ लीला करवाना है। अभी चैतन्य महाप्रभु का प्लान है। तो देखिए अभी भी जो हमारा इस्कन का लीला चल रहा है, ये महाप्रभु गौर लीला ही चल रहा है, कुछ अलग नहीं है हमारा भी लीला। हाँ, हमारा अलग अलग लीला हम देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि क्या है, लेकिन एक दृष्टिकोण से देखेंगे वही महाप्रभु का लीला भी इस्कॉन संस्था आगे ले रहा है। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु एक पार्सल भेजते हैं वृंदावन, 3 चीज भेजते हैं, उनका कोपिन भेजते हैं, उनका उत्तरिया भेजते हैं, और उनका चौकी भेजते हैं। चौकी मतलब मैं जैसे बैठा हूँ ये चेयर नहीं, चौकी मतलब ऐसा जो ब्यास आसन जैसा छोटा चौकी रहता है सन्यासी जो बैठते हैं वैसा चौकी रहता है। 3 चीज पार्सल करके कुरियर तुरंत स्पीड पार्सल वृंदावन भेजते हैं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलता है। और कुछ भी किसी भी एक गोस्वामी को मिलता है ना, 6 गोस्वामी एक साथ आ जाते थे, क्या मिला है महाप्रभु से चिट्ठी आया है। तो सब लोग पार्सल अनपैक करते हैं, तो पहला तो उत्तरिया आता है, चैतन्य महाप्रभु का खुद का उत्तरिया, और उनका कोपिन। उसका मतलब है कि जैसे सन्यासी जो रहते हैं, कोपिन मतलब सन्यास वस्त्र जो रहता है। तो इससे पता चलता है कि महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी को सन्यास देना चाहते हैं। तो सब गोस्वामी खुश हो जाते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी अभी बन गया अभी। और तीसरा आता है चौकी, बोलते कि चौकी क्यों भेजा है, बैठने के लिए चेयर भेजा है उधर से? तो उसका अर्थ क्या था, देखिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बहुत बड़े गोस्वामी थे, लेकिन वो ज़्यादा दीक्षा नहीं दिए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुगलों के अंदर काम किया था, है ना, बंगाल में जब सेवा कर रहे थे, दाबिर खास साकार मालिक थे ना, तो जो मुसलमान राजा थे उनके अंडर में वो सेवा किए थे, जिसके कारण उस समय का जो हमारा कास्ट सिस्टम था उस समय क्या अभी भी कितना स्ट्रांग है, कुछ इंटरकास्ट मैरिज होता है तो कितना कुछ बवाल मच जाता है फैमिली में। तो सोचो उस टाइम में है, अगर कोई ब्राह्मण रहेगा और उनके अंडर में दीक्षा लेना मतलब बहुत डिस्कशन का टॉपिक उठता था। तो इसलिए महाप्रभु बोले कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आप एक प्रामाणिक ब्राह्मण परिवार से आप हो, वेंकट भट्ट आपके परिवार, आपके तो श्रीरंगम मंदिर में आपके पापा हेड पुजारी थे, तो वैसे उनका जो खानदान है बहुत बड़ा एक प्रामाणिक ब्राह्मण परिवार से आए थे, बोलते इसलिए आप जब दीक्षा दोगे तो कोई भी संकोच नहीं करेगा और कोई भी प्रश्न नहीं उठाएगा, इसलिए चौकी उनको गिफ्ट में दिए ताकि आप दीक्षा देना चालू करो। तो इसी से गोपाल भट्ट गोस्वामी दीक्षा भी देना चालू करते हैं। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी का प्रचार चालू होता है वृंदावन में। और लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का एक इच्छा था, किसी का भी इच्छा रहेगा ना, गोदी में जिसका बचपन में खेला है, बड़ा हो गया देखने को तो इच्छा होगा ना महाप्रभु कैसे दिखते हैं। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तब, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का हमेशा इच्छा होता था कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं और महाप्रभु को देखूं। लेकिन लेकिन हमारा संप्रदाय में कैसा रहता है, सेवा सबसे बड़ा धर्म रहता है विप्रलंब में, गुरु का जो आज्ञा है उसको पालन करना। तो लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का हृदय में हमेशा इच्छा था कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, जगन्नाथपुरी जाऊं। और ऐसा ऐसा होते होते क्या हुआ, महाप्रभु अप्रकट हो जाते, महाप्रभु अप्रकट हो जाते हैं तोटा गोपीनाथ में। और जैसे खबर आता है गोपाल भट्ट गोस्वामी को, सोचो कैसा लगेगा कि मैंने महाप्रभु को देखने पाया। बहुत रोते हैं, सब रोते हैं सड़ गोस्वामी, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत, क्योंकि मैं दर्शन नहीं कर पाया महाप्रभु को जाने से पहले। और उस समय एक दिन रात को महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में सपने में आते हैं और बोलते हैं कि आप हमारा दर्शन करना चाहते हो ना, तो आप एक काम करो, आप एक यात्रा में निकलो। यात्रा कहाँ है? मुक्तिनाथ, यात्रा टू मुक्तिनाथ। तो बोले कि आप, ये थोड़ा हमारा हटके टॉपिक है मुक्तिनाथ, लेकिन महापुरुष सपने में आए, बोले कि आप मुक्तिनाथ आओ और मेरा दर्शन मिलेगा आपको। तो तुरंत गोपाल भट्ट गोस्वामी सभी गोस्वामी को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा महाप्रभु ने सपने में बोला। बोला अच्छा, ऐसा बोले, ठीक है फिर जाइए, फिर हम क्या, आप महाप्रभु का है तो सब जाइए। तो फिर निकलते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, मुक्तिनाथ कहाँ पर है, नेपाल में है ना, तो वहां पर जाते हैं, नेपाल में जाते हैं। और वहां पर सबसे फेमस नदी एक बहती है, गंडकी नदी। तो गंडकी नदी में जाके स्नान किए, और जैसे गंडकी नदी में जाके स्नान कर रहे थे, उनके पास एक कमंडलू था, कमंडलू लेके उससे स्नान कर रहे थे। और जैसे कमंडलू से स्नान कर रहे थे, कमंडलू ऐसा उठाए तो कमंडलू के अंदर क्या आ गया, शालिग्राम शिला आ गया। कितने शालिग्राम शिला, 12 शालिग्राम। बोले कि अरे बाप रे, 12 शालिग्राम शिला आ गया। तो डर गए अचानक, इतना शालिग्राम, फिर नीचे पानी में डाल देते, फिर स्नान करना चालू करते हैं, दोबारा स्नान करते हैं, क्या होता है, फिर से 12 डूब करके भीतर आ जाते। फिर तो अरे 12 फिर से आ गए, फिर डर जाते, फिर नीचे डाल देते हैं पानी में। और तीसरा बार फिर निकाल रहे, क्या होता है, फिर 12 के 12 फिर आ जाते हैं। तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर क्या हो रहा है, 3 बार आ गए। और 3 बार हो जाता है मतलब थोड़ा व्यक्ति अभी सीरियस हो जाता है ना, बोल के डर जाते, फिर बोल लगता है कि इनको मेरे साथ जाना है वृंदावन, लगता है 3 बार आ गए। बोले ठीक है अभी इनको लेके जाता हूँ। तो क्या करते हैं, 12 शालिग्राम शिला को लेके उनके साथ मुक्तिनाथ से वृंदावन आ जाते हैं। और आके सभी गोस्वामी को बुलाते हैं कि आइए देखिए मैं क्या लेके आया हूं, मैंने मुक्तिनाथ से मैंने 12 शालिग्राम शिला लेके आया हूं। तो सब गोस्वामी आते हैं, देखते हैं, सब आनंद में आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कितना सुंदर शालिग्राम है 12 शालिग्राम। और सब बहुत सुंदर रूप से उनका पूजा करना चालू कर देते हैं। और शालिग्राम का पूजा तो बहुत सिंपल है ना, कैसे पूजा करते हैं, थोड़ा गंगा जल और थोड़ा तुलसी पत्ता डाल के पूजा हो जाता है। तो एक दिन का बात है, एक दिन क्या होता है, वृंदावन में आप जाएंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं और बहुत सारा डोनेशन देते हैं वृंदावन में। तो एक दिन का बात है, वृंदावन में एक बहुत बड़ा धनी व्यापारी आता है और आके सभी मंदिरों में बहुत सारा डोनेशन दे रहा था। क्या डोनेशन दे रहा था, ज्वेलरी, सोना हीरा का चेन्स, ज्वेलरी जो भगवान का आभूषण लगता है कानों में नाकों में, नेकलेस है सब लगता है ना, चोकर सब लगता है। तो सब मंदिर को दे रहा था। तो राधा गोपीनाथ को दिया, राधा मदन मोहन को दिया, राधा गोविंद देव को दिया, राधा गोकुलानंद को दिया है, और कौन बच गए, राधा गोविंद देव को दिया, राधा दामोदर को भी दिया, बराबर राधा श्याम सुंदर को दिया। तो सब 7 गोस्वामी टेम्पल में भर भर के दिया। और ये राधा रमण में आए तो राधा गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा कर रहे, तो फिर इनको भी दिया, आप भी लो। बोले क्या, अरे मैं क्या करूँगा, भगवान रहते तो आभूषण सजाता ना कान में नाक में, मेरे तो शालिग्राम सिलाए, उनको मैं कैसे सजाऊंगा। तो बोले ठीक, उनको जरूरत नहीं, उनको तो तुलसी और गंगा जल चाहिए। तो बोले ठीक है ठीक है। और तब गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में एक विचार आया कि काश मेरे पास भी एक छोटे से विग्रह रहते हैं तो उनका मैं कितना सुंदर से श्रृंगार कर पाता। और उस दिन कौन सा दिन था? नरसिंह चतुर्दशी था। कल गया ना नरसिंह चतुर्दशी, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहे भगवान आप तो खंबे से भी निकले, मैं नरसिंह निकले ना खंबे से, आप तो खंबे से भी जन्म लिए हैं, तो आपके लिए क्या असंभव है, आप किधर से भी निकल सकते हैं। तो बोल के उनके मन में बहुत सारा, कभी कभी व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता तो कुछ भी बोलता है ना, तो ऐसे सोचने लगे कि भगवान तो खंबे से भी निकले, तो भगवान चाहेंगे तो क्या नहीं निकल सकते हैं क्या एक शालिग्राम से भी भगवान बन के, ऐसा वैसा सब बहुत सारा सोचे, सोच सोच के थक गए और सो जाते हैं फिर रात को। और फिर रात को भगवान उनके सपने में आते हैं, बोलते कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आप मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते, मेरा भी आप श्रृंगार कर सकते हैं, बोल के उनके सपने में आते हैं। सपना तो बहुत अच्छा लगा उनको, और सुबह उठते हैं, और जैसे अगर जो भी ब्राह्मण पुजारी रहेंगे शालिग्राम जी का, अगर रात में सुलाते हैं तो बेड़े में उनको रखते हैं और पतला सा एक चादर उनके ऊपर डाल देते हैं, सुला देते हैं। तो वैसे उनको रात में सुलाए थे, और सुबह उठते हैं उठाने के लिए जाते हैं तो पतला सा चादर जो डाले थे वो क्या होते हैं, ऐसा खड़े हो जाते हैं, ट्रेंगल जैसे रहता ना, ट्रेंगल जैसा था। तो बोले अरे क्या हो गया, ये तो चादर मैंने सुना है तो ऊपर कैसे उठ गया, और चादर को खींचते हैं, और जैसे ही खींचते हैं किनको देखते हैं, जय श्री राधा रमण भगवान की जय। तो देख क्या आश्चर्य हो जाते, अरे क्या है ये, तो शालिग्राम सिवा राधा रमण विग्रह में परिवर्तन हो गए। इतने खुश हो जाते हैं, सबको फोन करते हैं, सब गोस्वामी को आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपने इंस्टाग्राम में डालते हैं देखो क्या हो गया। और सब गोस्वामी दौड़ दौड़ के आते हैं उनके घर में, वो कह रहे हैं बाहर आ गया, शालिग्राम शिला से 11 ही है, और एक शालिग्राम शिला जो दामोदर शालिग्राम शिला था वो राधा रमण विग्रह में परिवर्तन हो गए। सब लोग देख के आश्चर्य हो जाते कि कैसे, ऐसा अद्भुत है, क्योंकि बाकी सब जो भगवान है उनको वज्र नाम ने बनाए, जो कृष्ण के पोते थे उन्होंने बनाए खुद अपने हाथों से, ये एक ही विग्रह है जो खुद प्रकट हुए हैं राधा रमण, क्योंकि खुद प्रकट हुए हैं इतने सुंदर थे। और इनका हाइट कितना है, 12 इंच 1 फीट है, ज्यादा बड़े नहीं छोटे हैं, लेकिन खासियत क्या है, भगवान खुद प्रकट हुए हैं इसलिए उनके शरीर में सब कुछ देख सकते हैं आप, जैसे कि नाक का नथनी लगाते हैं ना माताएं, सब होल रहता है ना, तो इस विग्रह में होल भी है। 12 इंच के विग्रह में कोई होल इतना बना नहीं सकता है कोई कारीगरी, इतने छोटे विग्रह में, लेकिन इनके नाक में भी नथनी है, कान में भी होल है, और छोटे छोटे दांत भी दिखता है देखेंगे तो, और छोटे छोटे नाखून भी दिखता है, जो कि इम्पॉसिबल है 12 इंच के विग्रह में कोई कारीगर बना ही नहीं सकता है, लेकिन भगवान खुद प्रकट हुए हैं इसलिए भगवान का शरीर का सब इसमें दिखता है। और जब ये विग्रह प्रकट हुए ना, तो इस विग्रह, क्योंकि भगवान खुद प्रकट हुए तो बोला जाता है कि कृष्ण गोपाल जैसे दिखते थे एग्जैक्टली वैसे ही प्रकट हुए। तो इसलिए जब वज्रनाभ ने सब विग्रह को बनाया था तो माता उत्तरा को बुलाए थे कि आपने तो कृष्ण को देखा है माता उत्तरा, तो आप थोड़ा देखिए विग्रह सब कैसा बनाए। तो माता उत्तरा सब विग्रह को एक एक देखती है और बोलती कि मदन मोहन जो है ना उनका पैरों से कमर तक कृष्णा के साथ मैच हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण को तो देखा है, अभिमन्यु का जो पत्नी थी माता उत्तरा। और आगे बढ़ के देखते हैं, अच्छा जो राधा गोविंद जो विग्रह है ना, राधा गोपीनाथ जो विग्रह है ना, उनका कमर से गर्दन तक मैच हो रहा है कृष्ण के साथ। और फिर लास्ट में राधा गोविंद देव को जब देखते हैं उनका चेहरा पूरा कृष्ण के साथ मैच हो रहा है। लेकिन ये तीन विग्रह को आप देख सकते हैं राधा रमण में है? राधा रमण का जो पैर है मदन मोहन के साथ मैच होता है, और राधा रमण का जो वक्षस्थल है गोपीनाथ के साथ मैच होता है, और राधा रमण का जो चेहरा है राधा गोविंद देव से मैच होता है। तो मदन मोहन जो है संबंध विग्रह हो गए, और जो गोपीनाथ हो गए प्रयोजन, प्रयोजन मतलब कृष्ण प्रेम जो मिलता है हृदय में है ना प्रयोजन, और जो चेहरा है
अभिधेय है, राधा गोविंद मतलब भजन कीर्तन जो माध्यम है। तो ये संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये तीन चीज आप किनसे देख सकते हैं? राधा रमन के विग्रह में। जय श्री राधा रमन भगवान की जय। तो ये हमारा राधा रमन जी का खासियत है। बेचारा बोर हो गया। तो ये राधा रमन जी का एक खासियत है, क्योंकि यहां पर राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ तीनों का दर्शन आप एक साथ कर सकते हैं। और क्योंकि ये इतने छोटे हैं, जब मुगलों का 1700 सेंचुरी में जब आक्रमण होता है वृंदावन में, सभी विग्रहों को बैलगाड़ी में लेके कहां लेके जाते हैं? जयपुर। जयपुर से पहले लेके जाते हैं कहां? राधा कुंड में। तो राधा कुंड में एक दो दिन रखते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि ये मुगल लोग कहां तक जा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो राधा कुंड से कहां लेते हैं? राधा कुंड से काम्य वन लेके जाते हैं। तो काम्य वन में एक हफ्ता रखते हैं, फिर देखते हैं कि मुगल लोग आगे बढ़ रहे कि नहीं। मुगल लोग और आगे बढ़ रहे हैं तो काम्य वन से और आगे लेते हैं, लेकिन वहां पर एक विग्रह रुक जाते हैं। कौन से विग्रह? वृंदा देवी। वृंदा देवी बोलते मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि काम्य वन जो है वृंदावन का बाउंड्री है। बोले कि बाकी सब लोग जगन्नाथ हैं, जगत के नाथ हैं, लेकिन मैं वृंदावन की माता हूं, मैं वृंदावन कैसे छोड़ के जाऊंगी, मैं इधर ही रहूंगी, बाकी सबको लेके जाऊं आगे। तो काम्य वन में आज भी जाएंगे तो ओरिजिनल वृंदा देवी का डीटी वहां पर देख सकते हैं। बाकी सब विग्रह को जयपुर लेके चले जाते हैं, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन करौली, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर, सब चले जाते हैं, लेकिन राधा रमण नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं? इतने छोटे हैं, 12 इंच के, कहां पर भी छिपा सकते हैं। तो सबने रिस्क लिया उनके लिए, बोले अरे इनको तो मैं किधर भी छिपा दूंगा। तो राधा रमन देखिए एक ही विग्रह है जो कि ओरिजिनल, आज के तारीख में भी आप वृंदावन जाते हैं तो राधा रमन जी का दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राधा रमन भगवान की। तो यह राधा रमन जी का खासियत है। और बोला जाता है कि राधा रमन मंदिर में इतना सुंदर रूप से पूजा होता है, जो इतने सारे गोस्वामी मंदिर में से जो पूजा का जो स्टैंडर्ड है, डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड, जैसे हम लोग डीटी वर्शिप सीखने के लिए अलग अलग जगह जाते हैं ना। हमारे शिवानंद श्याम प्रभु अभी मायापुर गए थे, 1.5 महीना रह के सीख के आए, मंत्र उच्चारण ये वो मुझे बता रहे थे क्या क्या स्टैंडर्ड रहता है। तो ये सब सीखने का स्टैंडर्ड रहता है, इतना आसान नहीं रहता है। तो राधा रमण मंदिर का जो पूजा करने का जो पद्धति है सबसे अच्छा है। प्रभुपाद ने खुद बोला है, जब हमारा हरे कृष्णा मंदिर इस्कॉन वृंदावन बन रहा था और नया नया विग्रह को स्थापना किया गया, तो प्रभुपाद खुद यमुना माता जी को भेजे कि तुम जाओ राधा रमण मंदिर जाओ और वहां से विग्रहों का कैसे पूजा होता है, आरती होता है, सीख के आओ और तुम डीटी मैनुअल लिखो। पहला डीटी मैनुअल हम पढ़ते हैं ना, वो यमुना माता जी खुद अपने हाथों से लिखती है। और वो कहां से सीखती है? राधा रमण मंदिर से सीखती है। और राधा रमण के जो हमारे जो भी पुजारी, जो भी संत रहे, वो बहुत इस्कॉन को सपोर्ट किए, हमेशा हेल्प किए हैं। और उसी प्रकार राधा रमण मंदिर भी इस्कॉन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। और इस राधा रमण मंदिर में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने तो भगवान का प्रतिष्ठा कर दिया। और राधा रमण जी का सामने से आप दर्शन करते हैं ना, कभी अगर पीछे से दर्शन करेंगे तो राधा रमण का पीछे से शालिग्राम शिला से प्रकट हुए हैं, तो पीछे का हिस्सा शालिग्राम शिला है, पीछे का आधा हिस्सा शालिग्राम शिला है, आगे उनका विग्रह। तो भगवान बताना चाहते हैं, वो प्रूफ रखे हैं भगवान, कोई बनाएगा बोलेगा नहीं तो मैं कोई बनाया है, भगवान बोले मैं शालिग्राम शिला से प्रकट हुआ हूं। तो पीछे का देखेंगे तो ऐसा गोल है, हाफ सर्किल ना, ऐसा शालिग्राम शिला है और आगे से विग्रह है। तो पीछे से कभी दर्शन करेंगे तो कर सकते हैं, ऐसा कभी जाएंगे। और फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, उनके एक शिष्य थे, उनका एक ब्रह्मचारी थे, उनको बोले कि आप इनका सेवा करो। वो बोले कि नहीं नहीं हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम घर गृहस्थी में नहीं प्रवेश करेंगे। तो फिर उनके एक छोटे भाई थे, तो उनको बोले कि आप कृपा करके गृहस्थ परिवार में प्रवेश करो और आपका पीढ़ी आगे सेवा करते रहेगा। तो फिर वो गृहस्थ परिवार में प्रवेश किए और तब से वो जो फैमिली है वही फैमिली राधा रमण का सेवा करते आ रहा है आज के तारीख तक।
तो उनके बच्चे होते 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 अभी इतने सारे उनके फैमिली हो गए, तो उसको बोलते हैं राधा रमण घेरा बोलते हैं। अब राधा रमण मंदिर जाएंगे, चारों तरफ देखेंगे तो परिवार है, फैमिली है, आपको एक लगेगा एक क्वार्टर है छोटा सा, चारों तरफ जो वही गोस्वामी के फैमिली रहते हैं, भाई भाई भाई, उनका बच्चा, डॉटर, ग्रैंड ग्रैंड सन, ग्रैंड सन, ओके, पूरा फैमिली है। और हर फैमिली का कुछ दिन मिलता है, 3 दिन या ऐसा कुछ मिलता है सेवा करने का, ऐसा रोटेशन में पूरा फैमिली करता है सेवा। साल भर का 365 दिन डिवाइडेड रहता है, कौन सा फैमिली कब करेगा सेवा, सोचो। तो उसको बोलते हैं राधा रमण घेरा बोलते हैं, पूरा मंदिर को घेर के रखे हैं वो गोस्वामी का परिवार और सेवा करते रहते हैं। तो इस प्रकार उस प्रेम से राधा रमण जी का सेवा होता है। तो 3 उनके शिष्य से गोपाल भट्ट गोस्वामी का, एक हो गए ब्रह्मचारी, दूसरे हो गए जो कि भाई उनके गृहस्थ में प्रवेश किए, तीसरे शिष्य थे और एक, कौन थे, कौन बताएगा उनका नाम, श्रीनिवास आचार्य, इनका भी आज जन्मदिन है ना, देखिए कैसा कोइंसिडेंट है। और उनके जो तीसरे शिष्य थे उनका नाम है श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य की जय। ये उनके तीसरे डिसाइपल थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी दोनों को तो सेवा में लगा दिया, मंदिर का सेवा, इनको नहीं लगा, इनको बोले कि आप प्रचार करो। तो श्रीनिवास आचार्य बंगाल से थे और उनको बहुत सारा शास्त्र, देखो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत नम्र थे लेकिन बहुत विद्वान थे। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत भी लिख रहे थे उसी समय पर, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने महाप्रभु के गोदी में खेला है, सोचो क्या क्या लीला किया है। तो सब जो साउथ इंडिया का जो टूर है, थोड़ी कृष्णदास कविराज गोस्वामी गए थे, ये सब 4 महीने का जो लीला सब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोला है, और वो जो बोले हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का एक कंडीशन था, क्या कंडीशन था, मेरा नाम नहीं लिखने का। देखो हम कोई रहेंगे, अरे पहले फोटो लो यार मेरा, मैं बोल रहा हूँ मेरा फोटो आएगा ना प्रभु, मैंने बोला है नाम लिखो ना, बोले नाम लिखा ना, बोलेंगे रिपोर्टर को, और इधर उल्टा हो रहा है। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोल रहे कि मेरा नाम नहीं लिखोगे तब मैं जाके बोलूंगा। तो कृष्णदास गोस्वामी बोले ठीक है यार बताओ। और देखिए इसलिए पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, कहाँ पर भी गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम नहीं आता है। रघुनाथ दास गोस्वामी का नाम आता है, रूप सनातन आता है, गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम नहीं आता है। लेकिन उन्होंने ही आगे बाद में जाके बहुत सारे आचार्य उनके बारे में लिखा, उनका नम्रता के बारे में लिखा। तो इस प्रकार बहुत विद्वान थे। जीव गोस्वामी का सर संदर्भ का जो आउटलाइन स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था गोपाल भट्ट गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी का हरिभक्ति विलास लिखने में उन्होंने मदद किया था, ऐसे बहुत सारा शास्त्र को उन्होंने हेल्प किया था। और फिर श्रीनिवास आचार्य उनके शिष्य थे, और श्रीनिवास आचार्य किनके स्कूल में पढ़ाई करते थे, जीव गोस्वामी के स्कूल में, तब का IIT कॉलेज था, जीव गोस्वामी इंस्टीट्यूट, आज भी है ना वृंदावन में जीवा इंस्टीट्यूट। तो श्रीनिवास आचार्य वहां पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि आज श्रीनिवास आचार्य का भी बर्थडे, तो थोड़ा उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य उनके और 2 फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड कौन कौन थे, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, ये 3 बेस्ट फ्रेंड थे। 3 एक साथ मिलके पढ़ाई करते थे, एक साथ स्कूल में जाते थे, सब एक साथ करते थे, और करते करते उनका IIT ग्रेजुएशन हो जाता है, 4 साल कंप्लीट हो जाता है। तो बोले ठीक है अभी कंप्लीट हो गया, तो अभी क्या, अभी जाके प्रचार करो आपने जो सीखा है। तो श्यामानंद पंडित कहाँ से थे, उड़ीसा से थे। तो बोले ठीक है आपके हवाले उड़ीसा जगन्नाथपुरी आप प्रचार करो, ठीक है। नरोत्तम दास कहाँ से थे, खेतुरी बंगाल, आप बंगाली में प्रचार करो। और श्रीनिवास आचार्य भी उधर से थे, तो आप भी जाके प्रचार करो। तो तीनों को ये जो रूप और सनातन गोस्वामी के इतने सारे शास्त्र था भर भर के जो लिखे थे, सब इनको दे देते, आप सब लेके जाओ उड़ीसा, क्योंकि मोस्ट ज्यादा से ज्यादा भक्त उड़ीसा बंगाल में थे, महाप्रभु ने बंगाल में जन्म लिया और 18 साल उड़ीसा में रहा, तो उसी 2 राज्य में सबसे ज्यादा, जय श्री राधा रमण भगवान की जय, तो उसी 2 स्टेट में सबसे ज्यादा भक्त थे, लेकिन प्रचार नहीं हो रहा था। तो तब तो व्हाट्सअप ये नहीं था, यूट्यूब नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो मीडिया वीडिया कुछ नहीं था, बुक भी नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं था, प्रचार करना है तो बुक चाहिए। तो सनातन और रूप दोनों मिलकर अपने हाथों में पुस्तक लिखी थी, एक एक कॉपी, 1 सिंगल कॉपी, वो भी पेपर नहीं था, ताल पत्ते में लिखे थे, सोचो। और ये जो मेनुस्क्रिप्ट है इन तीनों को देते हैं, इसको लेके जाके प्रचार करो। तो तीनों क्या करते हैं, बैलगाड़ी में उसको लोड करते हैं और वृंदावन से कहां निकलते हैं, बंगाल के तरफ निकलते हैं। और कीर्तन करते करते निकलते हैं, निकलते हैं, निकलते निकलते बोलते कि चलो महाप्रभु जिस रूट में आए थे हम उसी रूट में जाएंगे, झारखंड फॉरेस्ट होके जाएंगे। तो झारखंड फॉरेस्ट होके बंगाल में एंटर करते हैं तो एक गांव आता है, क्या उसका नाम है, कुछ विष्णुपुर बोल के गांव आता है बंगाल का एंट्रेंस में। तो बोले यार बहुत थक गए रात में, यहां थोड़ा सो जाते हैं फिर सुबह यहां से जाएंगे। तो बैल को सब लूच कर देते हैं और रात को तीन उधर बैल सो जाते हैं। और उसी समय अब इंटरेस्टिंग एक तो स्टोरी होता है, उस विष्णुपुर का राजा था एक, ठीक है, और राजा एक नंबर का चोर था, ठीक है। तो वो राजा क्या करता, राजा के पास एक एस्ट्रोलॉजर था। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता, कोई भी पैसा वाला अगर उसके किंगडम में घुसता था ना, बोलता है राजा बहुत माल है इसके पास, हड़प लो। तो राजा क्या करता था, खुद ही डकैती करता था और लेके आता। अभी राजा खुद चोरी करेगा तो किसके पास जाएगा प्रजा। तो ऐसा राजा था वो, तो इतना पैसा लूट लूट के खजाना भर दिया था पूरा। तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर देख रहा है, बोले कह रहे महाराज जी बहुत बड़ा खजाना घुसा है आपके किंगडम के अंदर। बोले क्या बात करते, बोला हाँ बहुत बड़ा खजाना है, करोड़ों का माल है। बोला अच्छा किधर है, वो पेड़ के नीचे तीन आदमी सोए हैं और उनका बैलगाड़ी में है। बोला अच्छा, बोले ठीक है ठीक है। तो बहुत, बोले बहुत अभी तक का सबसे बड़ा लॉटरी लगा है आपको, अच्छे से ले लो। बोले उसका एक्सपर्ट चोर जो था उसको भेजता है, आराम से जाने का, साधु लोग है मारने का नहीं, ठीक है, लेकिन माल आ जाना चाहिए। बोला अरे आप फिक्र मत करो, हम ऐसे जाएंगे वैसे लेके आएंगे। ये सब आते हैं क्या करते हैं, रातारात सब बैलगाड़ी में जो था लेके चले जाते हैं। और सुबह उठते हैं तीन गोस्वामी, उठते देखते अरे किधर गया, इतने मेहनत से रूप सनातन लिखे थे, सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट ताल के पत्ते में, सोचो एक बुक लिखने के लिए सालों साल लगता है। सब रोना चालू करते हैं कि अरे जीवन हमारा बर्बाद हो गया, क्या मुंह दिखाएंगे सड़को स्वामी को, एक सिंगल, अबे कंप्यूटर नहीं था कि कॉपी पेस्ट मारेंगे कॉपी बन जाएगा, एक एक ताल के पत्ते में लिखे थे एक एक मैन्युस्क्रिप्ट। तो सब लोग रोने लगे, अरे क्या करें अभी क्या करें। बोले कि इधर ही सुइसाइड कर लेते हैं। बोले तो श्रीनिवास आचार्य थोड़े मैच्योर थे सबसे, तो श्रीनिवास आचार्य बोलते अरे टेंशन मत लो मैं कुछ करता हूं, आप एक काम करो, श्यामानंद पंडित आपको क्या बोला, आपको उड़ीसा में प्रचार करना है ना, उड़ीसा जाओ आप, इधर मत रहो उड़ीसा में जाके प्रचार करो। नरोत्तम दास ठाकुर आपको क्या बोला, बंगाल में प्रचार करना है, बंगाल जाओ, तो जाओ इधर मैं हूं ना, मैं कुछ करता हूं, आप दोनों निकलो इधर से। तो दोनों को पहले भेज देते हैं श्रीनिवास आचार्य। फिर ये सोचते कि क्या करूं अभी, तो ये देखो कितने चालाक थे, ये बोलते कि निकालना तो पड़ेगा मुझे माल। तो फिर ये घूमना चालू करते हैं, एक एक संत के रूप में भिखारी का वेश ले लेते हैं और घूमना, भीख मांगते मांगते ऐसा ऐसा गांव में घूमते हैं। बोलते ना कभी कभी, बोलते ना चोर लोग भिखारी होके आते हैं घर में और देखते हैं घर में क्या है, तो बोलते हैं भिखारी को ज्यादा अंदर अंदर लाना नहीं चाहिए, बाद में डाका डालते हैं, पहले ऐसा बहुत होता था। तो श्रीनिवास आचार्य भिखारी के रूप में लेके पूरा वन विष्णुपुर में घूमते हैं चारों तरफ। घूमते घूमते एक दिन उनके कानों में खबर मिलता है कि यहाँ का जो राजा है एक बहुत बड़ा भागवत कथा रखा है राजमहल में। बोले क्या बात है, बहुत दिन से चलो भागवत सुना नहीं, इसी बहाने थोड़ा भागवत सुनने को मिल जाएगा, घूम घूम के पक गया हूं। तो जाते हैं राज दरबार में, पहुंच जाते हैं भागवत सुनने के लिए। तो बैठते हैं भागवत सुनते हैं और पंडित जी भागवत कथा कर रहे हैं, भागवत चालू है। ये तो श्रीनिवास आचार्य इतने बड़े विद्वान हैं और पंडित जी करते करते कुछ उसमें त्रुटि आ रहा है, तो इनको थोड़ा, अभी देखो जो स्कॉलर रहेगा उसके सामने कुछ गड़बड़ करोगे तो उसका मुंह निकलेगा, क्योंकि वो स्कॉलर है। अभी पीएचडी स्कॉलर रहेगा उसके सामने अगर कुछ गलती करेंगे वो तुरंत बोलेगा अरे सर गलती ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, क्योंकि उसका वो पीएचडी है। तो ये हमारा शास्त्र में पीएचडी है, उनके सामने कथाकार कुछ ऊपर नीचे कथा गड़बड़ चल रहा था, तो ये तुरंत बोलते कि अरे महाशय आपका इसमें थोड़ा त्रुटि है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए था। तो पंडित महाशय थोड़ा उनको झटका लगता है कि अरे ये तो संस्कृत का बड़ा सा बड़ा गूढ़ ग्रामर के बारे में बोल रहे हैं। बोले अरे कौन है आप। तो फिर सब लोग आश्चर्य हो जाते कि कौन है भिखारी। तो राजा भी बहुत आकर्षित हो जाते हैं, ये साधारण भिखारी इतना बड़ा गलती निकाल दिया बड़ा महाभागवत कथाकार का। तो और जो बोलते हैं बहुत अच्छे से बोलते हैं वो, तो राजा को अच्छा लगता है। और राजा बोलते हैं कि अरे महाशय जी आप यहाँ पर ही रहिए ना मेरा राजमहल में, और आपको मैं खाना पीना सब देता हूँ, और आप और यहाँ पर कुछ दिन बिताइए और यहाँ पर थोड़ा आपसे भागवत कथा हम सुनेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य बोले ठीक है, ऐसे ही तो घूम रहा हूँ भिखारी की तरह, इधर भी थोड़ा रह जाते हैं। और हर रोज क्या होता था, राजा बैठते थे और उनसे भागवत कथा सुनते थे, और ये हर रोज भागवत कथा राजा को सुनाते थे। ऐसे होते होते एक दो महीना बीत जाता है, तो राजा का और श्रीनिवास आचार्य का पूरा जोड़ी अच्छा बन जाता है पूरा, और अच्छा रिश्ता बन जाता है, धीरे धीरे क्लोज हो जाते हैं। तो एक दिन श्रीनिवास आचार्य बोला अभी बोल ही देता हूँ दिल का बात, इसको अभी क्या छुपाने का, इतना अच्छा रिलेशन हो गया उसको क्या पता है यूं ही चोर। तो एक दिन राजा को बोल रहे कि अरे महाराज जी आपको पता है क्या, बोले क्या, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ आपको पता है, बोले कौन है आप, अरे मैं वृंदावन से आया हूँ और मैं बहुत बड़ा नहीं मैं एक गोस्वामी हूँ, वृंदावन से आया हूँ, सन्यासी हूँ, और मैं ना वो शास्त्रों को लेके यहाँ से जा रहा था बंगाल, और एक दिन यहाँ पर रात को सोया था आपके किंगडम में, और पता नहीं रात को चोर आए और सब चोरी करके चले गए। तो राजा बोला कि अरे बाप रे अभी क्या बोलेंगे, राजा को बहुत खराब लग रहा है, बोले अरे। तो राजा तब तक राजा ट्रंक खोल के देखा भी नहीं क्या अंदर है, बोले क्या है, पुस्तक था उसके अंदर, हाँ हमारे गोस्वामी लोग जो लिखे थे हरि भक्ति विलास भक्ति रसामृत सिंधु सब पुस्तक था उसके अंदर, ऐसा है क्या, अरे यार बोले ठीक है मैं कुछ करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए आप आराम कीजिए। फिर राजा तुरंत मंत्री को बोला, अरे वो एस्ट्रोलॉजी को बुलाते हैं, अरे क्या बोला तूने, क्या है खोल के देख। तो खोल के देखते हैं तो सब पुस्तक है, भरा है सब पुस्तक। तो राजा बोले तू क्या ये सोना है क्या हीरा है, बोला अरे अभी मेरा तो एस्ट्रोलॉजी में वही दिखाया, अभी सचमुच देखेंगे तो भागवत तो सबसे बड़ा हीरा है तो उसका एस्ट्रोलॉजी में बराबर दिखाया सबसे बड़ा हीरा है, सबसे बड़ा कीमती धन है। तो बोला कि अरे बड़ा गलती हो गया यार, अभी क्या है संत महाराज का ये सब पुस्तक है। तो बोला ठीक है जो हुआ हुआ। फिर राजा आप जाके श्रीनिवास आचार्य के पैर में गिर जाते हैं, बोले कि अरे संत महाशय क्षमा कर लीजिए। बोले क्या हुआ क्या हुआ, बोले अरे वो चोर और कोई नहीं है मैं ही हूँ। तो बोले कि आप, बोले हाँ क्षमा कर लीजिए, आपका शिष्य समझ के माफ कर लीजिए, और आप जो दंड देंगे मैं उसको स्वीकार करने के लिए राजी हूँ, मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, बहुत बड़ा गलती हो गया, ऐसा कभी सोचा नहीं था किसी संत का पुस्तक चोरी करूंगा। तो श्रीनिवास आचार्य बोले ठीक है दे दीजिए पुस्तक जो है दे दीजिए, अभी मुझे जाना है। बोले नहीं मुझे क्षमा पहले कीजिए। बोले ठीक है आगे से चोरी मत कीजिए, इतना चोर करके आपका खजाना भर दिया है, क्या करेंगे पैसा लेके सब किधर जाएंगे। बोले हाँ वो भी सही है। तो बोलते आज से आपका नाम क्या होगा, हरिचंदन, बोल के उसका दीक्षा दे देते। तब से वो राजा जो चोर था सबसे बड़ा गुंडा था मवाली था वो वैष्णव बन जाता है। तो फिर बोले अरे गुरुदेव कुछ तो आदेश दे के जाइए, अभी शिष्य बना दिया आदेश क्या है। बोले कि आपका आदेश जो है, इतना जो धन आपने चोरी करके जमा किया है तिजोरी में खजाना में, ये धन से आप एक वृंदावन बनाओ, जैसे यहाँ पर राधानाथ महाराज ने वृंदावन बनाया ना गोवर्धनी को विलेज। तो बोले कि आप भी यहाँ पर एक वृंदावन बनाओ, प्रति वृंदावन बनाओ, वहाँ पर गोवर्धन यमुना सेवन गोस्वामी टेम्पल सबको निर्माण करो, सुंदर सा वृंदावन बनाओ और सब लोग यहाँ पर आना चाहिए। तो राजा बोला जो हुकुम। और श्रीनिवास आचार्य तो आगे बढ़ गए, और लेकिन जो राजा हरिचंदन जितना धन जो चोरी का कमाए थे सब धन को वृंदावन बनाने में लगा देते हैं, और इतना सुंदर भव्य वृंदावन बनाते हैं, उसको नाम पड़ गया वन विष्णुपुर। पहले नाम था विष्णुपुर, फिर लग गया वन विष्णुपुर, मतलब वृंदावन विष्णुपुर। और उसमें सब प्रकार के जो वृंदावन में राधा कुंड श्याम कुंड गोवर्धन यमुना सबका निर्माण करते हैं। और इतना ही नहीं, सामने मंदिर के जो आसपास के जितना गांव है, जैसे ब्रज का 84 क्रॉस जो है ना गांव, सभी गांव के नाम पे हर गांव का नामकरण कर देते हैं, क्योंकि अभी राजा चाहेगा तो कौन मना करेगा, अभी मोदी जी चाहेंगे तो कौन मना करेंगे। तो राजा चाहे, देखो एक राजा अगर भक्त बनता है तो कितना पावर है। उतना बड़ा गुप्त वृंदावन दुनिया में किधर नहीं है, इतना बड़ा उन्होंने बनाया। बोलते हैं कि 360 से भी ज्यादा गांव को उन्होंने भगवान ब्रज के गांव के नाम से उन्होंने नामकरण कर दिया था, और हर गांव को कुछ ना कुछ सेवा दिया था भगवान का सेवा करने के लिए। तो ये भी एक गुप्त वृंदावन आता है, जो 10 गुप्त वृंदावन है ना उसमें से वन विष्णुपुर एक गुप्त वृंदावन आता है, जिनका श्रेय जाता है श्रीनिवास आचार्य को। जय श्री श्रीनिवास आचार्य की। समय हो गया तो, और नीचे एक फोटो है उनके बारे में थोड़ा बोल देते हैं। आज नीचे फोटो आपको दिख रहा है, कौन है? माधवेंद्रपुरी की जय। तो आज भी उनका जन्मदिन है, माधवेंद्रपुरी जी का जन्मदिन है। तो माधवेंद्रपुरी बोला जाता है कि जो हमारा गौड़ीय वैष्णव में जो राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसका पहला अंकुरित जो है माधवेंद्रपुरी, उनसे ये पहले कृष्ण को मानते हैं। अगर देखेंगे माधव संप्रदाय में जाएंगे, उडुपी में आप लोग गए हैं, कौन कौन गए हैं उडुपी में? वहां पर विग्रह कौन है? उडुपी कृष्ण। राधा रानी है? नहीं है। लेकिन हमारा संप्रदाय माधव संप्रदाय से आता है ना, तो माधव संप्रदाय में कृष्ण को पूजा करते हैं, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय में राधा कृष्ण को पूजा करते हैं। ये जो राधा रानी कृष्ण के साथ पूजा करने का जो पद्धति शुरू हुआ है, इन्होंने शुरू किया है जय श्री माधवेंद्रपुरी ने। तो माधवेंद्रपुरी जो है राधा और कृष्ण का प्रेम, जो ये जो परकिया रस, इसको पहली बार संप्रदाय में लाया, उनसे स्टार्ट हुआ गौड़ीय संप्रदाय। ये गौड़ीय संप्रदाय के जो स्रोत हैं। तो माधवेंद्रपुरी का मैं छोटा सा एक लीला बता के समापन करूंगा। तो माधवेंद्रपुरी बोलते हैं कि अयाचक थे, मतलब अजगर वृत्ति था। जैसे आप कोई सन्यासी रहता है तो जाके घर घर में भिक्षा मांगते हैं ना, भिक्षाम देही, तो कुछ मिलता है तो खाते हैं। लेकिन अजगर वृत्ति, अयाचक वृत्ति मतलब क्या है? भिक्षा नहीं मांगना, एक जगह पर बैठे रहेंगे, भजन करेंगे। कोई आके अगर दिया हाथ में तो खाएंगे, नहीं दिया तो नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे। डेंजर है ना लेकिन उनका वो वृत्ति था माधवेंद्रपुरी का। तो इस प्रकार भजन कर रहे थे एक जगह पर, और कृष्ण देख रहे कि अरे क्या खा नहीं रहे, 3 दिन से भूखा है, भगवान को तो अच्छा नहीं लगेगा ना, शुद्ध भक्त अगर भूखा रहेगा। तो कृष्ण एक गोपाल के रूप में आ जाते हैं एक दिन, और बोलते अरे बाबा क्यों नहीं खा रहा है, क्या हो गया? तो ये चुप बोलते भजन कर रहे हैं, बोला अरे हमारा वृंदावन में कोई भूखे नहीं रहता है, क्यों नहीं खा रहा है तुम? बोले तेरे लिए मैंने खीर लाए हुए, और एक मटका में खीर देते हैं, खाओ। तो माधवेंद्रपुरी बोलते ठीक है, और गोपाल चले जाते हैं और खीर खाना चालू करते हैं। जैसे ही खीर को मुंह में डालते हैं, ये तो कोई साधारण खीर नहीं है, कृष्ण ने दिया है, मुंह में जैसे ही डालते हैं तो अचानक अलग ही अनुभव आ रहा है, ये तो दिव्य टेस्ट आ रहा है। अरे क्या है, पूरा अष्ट सात्विक विकार चालू हो जाता है, पूरा रोना धोना। तब उनको पता चलता है कि ये लड़का कौन है? कृष्ण था। अरे मैं कितना बुद्धू हूं, भगवान को पहचान नहीं पाया, कृष्ण खुद अपने हाथों में आके खीर दे के चला गया और मैं पहचान भी नहीं पाया। बोल के खीर खा के क्या करते हैं, बहुत रोते हैं, फिर रोते रोते क्या करते हैं, उस मटके को तोड़ के कपड़े में बांध के रखते, कृष्ण ने दिया है ना मटका, कोई साधारण मटका थोड़ी रहेगा। और हर रोज क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसका मिट्टी खाते थे ताकि कृष्ण को स्मरण कर सके। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी थे हमारे, और रात को सो जाते हैं, और फिर कृष्ण फिर सपने में आते हैं, बोले कि बाबा बहुत गर्म लग रहा है। बोले कि गर्म लग रहा है? किधर गर्म लग रहा है? तो बोले कि अरे मैं यहां पर गोवर्धन में पड़ा हूं कब से, बहुत गर्मी लग रहा है, मुझे निकालो इधर से और एसी रूम में रखो। बोल रहे प्रभु जी एसी रूम में लगाओ इसे। बोले बहुत गर्मी हो रहा है। तो माधवेंद्रपुरी उठते हैं, अरे किधर गर्मी हो रहा है, किधर गोपाल है? और सुबह सब ब्रजवासी को बुलाते, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बोले कि इधर तो बोल रहे हैं गोपाल कुछ है, गर्मी लग रहा है बोल रहे हैं, और सबको लेके खोदना चालू करते हैं। और जैसे खोदते हैं खोदते हैं, सचमुच है छोटा सा एक सा हाथ दिखता है ऊपर। बोले कि आराम से खोदो निकालो, और निकालते निकालते पूरा शरीर निकालते, कौन निकलते हैं?
जय श्री गोपाल भगवान की जय।
पर गोपाल भगवान का प्रकट होते हैं, सब लोग बोले अरे तो भगवान गोपाल प्रकट हो गए, और पूरा धूमधाम से उनका अभिषेक होता है, उनका प्राण प्रतिष्ठा होता है, और पूरा चारों तरफ से बरस से हर गांव में लोग एक एक गाय लेके आता है, एक एक गाय लेते लेते उनका हजार हजार गाय बन जाता है पूरा, और कोई हर रोज अन्नकूट होता है, आज ये गांव वाला आके स्पॉन्सर कर रहा है, कल वो गांव वाला स्पॉन्सर कर रहा है, पूरा उनका भोगा के ऊपर चल रहा है, पूरा धमाल हो गया पूरा 84 कोस में, गोपाल प्रकट हो गए। और एक दिन सोते हैं फिर माधवेंद्रपुरी, फिर भगवान सपने में आते हैं, बोले कि अरे बहुत गर्म लग रहा है, बोले अरे इतना बड़ा अभिषेक किया, इतना पानी डाला, बोले कि नहीं 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 बहुत गर्मी लग रहा है, बोले कि अभी क्या करूं अभी, बोले कि नहीं तुम क्या करो ना, अब मुझे थोड़ा चंदन का लेप लगाओ, चंदन का लेप, वो भी कौन सा चंदन, वो उड़ीसा में जो मिलता है ना मलाई चंदन, वो लेप लगाओ तब थोड़ा आराम लगेगा। तो कोई बोलेगा अरे इतना कुछ किया तो लेकिन नीचे दुख कष्ट ना गड़े, थोड़ा भी अपने दुख कष्ट के बारे में नहीं सोच रहे, गो क्या करते हैं माधवेंद्रपुरी, ठीक है तुरंत दोनों को सेवा में लगाते हैं और खुद निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी, अकेले निकल जाते हैं, किसी को भी भेज सकते थे ना, लेकिन अकेले निकल जाते थे, हजार हजार लोग उनके अंडर में सेवा कर रहे हैं लेकिन अकेले निकल जाते हैं, सीधा जगन्नाथपुरी जाते जाते बालेश्वर आता है, किरचोर गोपीनाथ आता है, रेमुणा आता है, तो वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचते पहुंचते देखते कि रेमुणा में खिरचर गोपीनाथ को सुंदर सुंदर खीर अर्पण कर रहे हैं, बोलते कि अरे वाह इतना अच्छा अच्छा खीर अर्पण कर रहे हैं, काश मैं थोड़ा चखता तो मेरे भी गोपाल को अर्पण कर पाता, लेकिन तब तक देखते हैं कि भगवान को भोगा लगा नहीं अभी तक, तो बोलते अरे कितना पापी हूं यार, भगवान को भोगा नहीं लगाया और मैं सोच लिया, जगह छोड़ के चले जाते हैं वहां पर, और क्या होता है भगवान को भोग लग जाता है, और रात को पुजारी को सपने में आते हैं किरचोर गोपीनाथ, बोलते कि पुजारी उठो, बोले बोले किधर से आवाज आया शिवानंद चैंबर, बोले हमको भी तो बोले क्या हो गया, बोले उठो मेरे घर में आओ, तो 12 बजे 1 बजे हुआ रहता है, उठता है तुरंत स्नान करता है फिर घर में जाता है, बोले कि अरे तुमने 12 मटका लगाया था भोग, एक मटका मैंने चोरी करके धोती के नीचे रखा है, देखो निकालो, तो बोले कि हाँ बराबर यार एक मटके चोरी किया है, तुम्हें पता भी नहीं चला, बोले मैंने मेरा भक्त के लिए चोरी किया है, जो वो आया है माधवेंद्रपुरी वृंदावन से उसको जाके दो, सोचो कैसे भक्त थे, भगवान ने चोरी किया उनके लिए खिलाने के लिए, तू ये बोलते कह रहे कौन है माधवेंद्रपुरी यार, तेरे लिए भगवान ने चोरी किया, हमको तो दर्शन भी नहीं, माधवेंद्रपुरी कौन है, चिल्ला के रात के 12-1 बजे दौड़ रहे हैं मार्केट में, और ये बेचारे रो रहे हैं कि मैंने क्यों ऐसा सोचा, भगवान को भोगा लगने से पहले खाने का ऐसा क्यों सोचा, रो रहे हैं, बोले कौन है माधवेंद्रपुरी, बोलते कि पता नहीं पुजारी मारने के लिए क्या हो गया अभी, बोले कि मैं हूं, बोले अरे तेरे लिए भगवान ने खीर कैला चोरी, नाम पढ़ला खीर चोर गोपीनाथ, तो इसीलिए तब से भगवान का नाम क्या हो गया, खीर चोर गोपीनाथ भगवान की जय। तो माधवेंद्रपुरी को देते, बोल तू उनको पुजारी दंडवत प्रणाम करता, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता कि धन्य है तू, भगवान तेरे लिए चोरी क्या, मुझे तो एक बार बात भी नहीं किया ऐसा, तेरे लिए मेरे सपने में आया आज। तो माधवेंद्रपुरी फिर चले जाते हैं, लेकिन माधवेंद्रपुरी कितने मैच्योर थे देखिए, उनको पता चलता है कि सबको अगर ये खबर हो जाएगा तो मेरा नाम कितना फेमस हो जाएगा उड़ीसा में, हैं भगवान मेरे लिए चोरी किया, रातारात उधर से गायब हो जाते हैं, किधर चले जाते हैं जगन्नाथपुरी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उनका नेम फेम, उनका व्हाट्सअप स्टेटस, उनका इंस्टाग्राम स्टेटस सब पीछे पीछे फॉलो करता है, वो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं उनका आगे आगे और एक स्टेप फॉलो कर रहा है, अरे माधवेंद्रपुरी यही है जिनके लिए भगवान ने चोरी किया है। और जैसे पुरी में पहुंचते हैं बोलते कि मुझे थोड़ा चंदन दे दीजिए गोपाल को, अरे आपके लिए चंदन क्या, सब दे देते हैं उनके लिए चंदन, चंदन को उठाने के लिए लोग सब दे देते हैं, लेके जाइए गवर्नमेंट परमिशन सब निकाल के देते हैं। और फिर जगन्नाथपुरी से लेके आते 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 पहुंचते हैं कहाँ, खिरचोर गोपीनाथ के पास पहुंचते हैं, और वहां पर रात में थोड़ा सोते हैं विश्राम करते हैं, तो गोपाल सपने में आते हैं, बोले कि माधवेंद्रपुरी आपने जो चंदन लाया है ना सब खिरचोर गोपीनाथ को लगा दो, वो और मैं अलग नहीं हूं सेम ही है, तो उनको आप लगाएंगे तो मेरा जो भी गर्मी यहां पर हो रहा है सब निकल जाएगा। तो फिर माधवन बोला, अरे इतना तो फिर इतना पहले इतना क्यों? तो जितना चंदन था उधर ही घिस के माधवेंद्रपुरी सब खिरचूर गोपीनाथ को हर रोज लगाते 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 वहां पर ही माधवेंद्रपुरी बैठ जाते हैं और वहां पर ही भजन कीर्तन करते हैं और वहां पर ही उनका समाधि वो ले लेते हैं। तो आज भी आप जाएंगे रमुणा धाम में तो वहां पर खिरचूर गोपीनाथ जी का दर्शन कर सकते हैं और मंदिर के पीछे माधवेंद्रपुरी जी का समाधि मंदिर भी दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने माधवेंद्रपुरी का आज अपियरेंस डे है इसलिए उनके बारे में भी चर्चा किया, राधा रमन जी का भी अपियरेंस है उनके बारे में भी चर्चा किया, श्रीनिवास ठाकुर जी का भी अपियरेंस है जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का शिष्य है उनके बारे में भी चर्चा किया। जय श्री राधा रमन भगवान की, जय श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की, जय श्री श्रीनिवास आचार्य की, जय श्री माधवेंद्रपुरी की। हरे कृष्ण। अभी आरती होगा। हरे कृष्ण।
संसार दावा ललीडलोक त्राणाय कारुण्य गणागनात्वम्
संसार दावा ललीडलोक